फिर जब इंसान कोई गर्म जगह पे हो या गर्मी उसको बहुत लगे, दुनिया में सोचे तो दो चीजें हैं जो वो मांगता है। एक, सबसे पहले वो या तो कोई साया तलाश करता है, या फिर वो घर में भी आया तो जल्दी से क्या कहता है, पंखा चला दो, पानी दे दो, मुझे पंखा चलाओ, फौरन पंखा। वो ये नहीं कहता मुझे खाना दे दो, वो ये नहीं कहता मैंने अभी सोना है, कहता है जल्दी पंखा चलाओ, जल्दी एसी चलाओ, जल्दी मुझे पानी दो। उसी बात को अगली आयत में कहा गया, ला यदूकून फीहा बर्दन वला शराबा। वहां पे उनको सबसे बड़ी तो यही ख्वाहिश होगी ना कि कोई ठंडक मिल जाए या कोई पीने को पानी ही मिल जाए, आए प्यास, क्योंकि प्यास की भी शिद्दत इतनी होगी, इतनी ज्यादा इंसान को प्यास लगी होगी कि प्यास उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही होगी, और वो सोचेगा कहीं मुझे कुछ मिल जाए पीने को, और ऐसा खाना भी दिया जाएगा कि उसके बाद भी प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा होगी, और इंसान पानी मांगेगा, लेकिन उसके लिए वहां पे कुछ पीने को नहीं, उसके लिए वहां पे कोई ठंडक का इंतजाम नहीं, वो थोड़ी देर के लिए भी ठंडक नहीं। आप देखें कि इंसान जरा सा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता इस दुनिया के अंदर, जरा भी गर्मी हो जाए तो इंसान कितना, मतलब हर काम छोड़ देता है, हाय 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 हाय, बस यही उसकी जुबान पे होता है। और जहन्नुम की आग क्या चीज है, उसके बाद इंसान जब वहां के खाने उसको दिए जाएंगे तो फिर पीना की ख्वाहिश करेगा, वो पीने की चीज दो, तब कहा जा रहा है ला यदूकून फीहा बर्दन वला शराबा, चखेंगे भी नहीं, ला ये शराबूना नहीं है कि नहीं पिएंगे, चखेंगे भी नहीं कोई ठंडक, ठंडक के दूर दूर तक ठंडक का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक कोई पीने की चीज नहीं है। इससे आप अंदाजा कीजिए एक बात से, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, के जब एक जहन्नमी जहन्नम के अंदर अभी गया नहीं है, सूरह अंबिया में आयत 46 के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि नफ़हा उसको छुएगा। नफ़हा क्या है, वो दूर अभी जहन्नम से होगा, दूर बहुत दूर, और इतनी दूर है कि जहन्नम का नफ़हा उसको सिर्फ छू रहा है, और नफ़हा कहते हैं ठंडी हवा को। जैसे कि आप सोचें जब आप खाना बनाते हैं ना, तो एक आप अपना हाथ उसके करीब ले जाएं तो स्टीम उठती है, उससे स्टीम उठती है तो वो गर्म होती है, लेकिन जैसे आप हाथ दूर लेके जाएं तो अब वही जो भाप है उसमें थोड़ी सी मतलब ठंडक हो गई, अब वो वैसी गर्म नहीं है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अब मतलब उस तरह से आप कह सकते हैं कि आप ठंडी हो गई इसका धुआं। जहन्नुम का जो नफ़ा है ना, यानी दूर जो उसका धुआं पहुंच रहा है, जो उसकी स्टीम पहुंच रही है, जो उसकी हवा पहुंच रही है, वो है नफा, ठंडी हो गई है, वो जब उसको छुएगी, मस्सतहुम नफहतुम मिन अदाबि रब्बिका, जब वो नफा छुएगा तेरे रब के अजाब में से, तो वो क्या कहेंगे, या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय हमारी बदबख्ती, हाय हम हलाक हो गए, हाय वैल वैल, हम ही जालिम थे, वैल कहेंगे, और वैल हम पहले पढ़ चुके, वैल उन यौम इज़्ज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन वैल है तकजीब करने वालों के लिए। वो कह रहा है वैल, और मैंने आपको वहां पे बताया था ना, वैल जहन्नुम की एक वादी है, सारी जहन्नुम उससे डरती है, उसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है, उसके पहाड़ दूसरे को खा रहे हैं, उसमें पहाड़ भी डाल दिया जाए तो पिघल जाए, वो इतनी ज्यादा बुरी जगह है कि जहन्नुम सारी उससे डरती है, और वो जगह है जहां पे जहन्नमियों के पीप और खून और उनके जो जख्मों से गंध निकल रहा है, वो सब वहां जमा होता है, गटर है समझ लें जहन्नुम का गटर, वो वादी है। और गटर भी नीचे को होता है ना, ये भी वादी है। वो कहेंगे हाय वहील, यानी वो इसको वहील कह रहे हैं जो अभी सिर्फ नफहा छुआ है, यानी इतना हमें अजाब आ गया, इतना हमारे ऊपर अजाब आ गया, इतने हम शदीद अजाब से गुजर रहे हैं, हालांकि वो तो अभी ठंडा नफहा इनको छुआ है, अभी तो इनको कुछ छुआ ही नहीं, और वो चीखे मारेंगे। तो वहां पे कोई ठंडक चखने के लिए भी नहीं है और ना पीने की कोई चीज। हाँ एक चीज है, इल्ला, इल्ला से इंसान सोचता है ओ कोई चीज है पीने की, कौन सी चीज, हमीम हुआ गस्साका, खौलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी ऐसा कि ये वो पानी नहीं है जो कि H2O, जो जो आप अपना फॉर्मूला लगाते ना पानी का फॉर्मूला H2O है, वो वाला नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं बना हुआ, क्योंकि वो वाला पानी तो 100 डिग्रीज पे इवेपोरेट हो जाएगा, जहन्नुम में ऐसे पानी होगा तो पानी रह ही नहीं सकता। वो क्या पानी है जो इतनी ज्यादा डिग्रीज के ऊपर भी मौजूद है लिक्विड फॉर्म में, वो क्या पानी होगा, अंदाजा करें ना कि जहन्नुम का टेम्परेचर जो है, आपसे सलम ने फरमाया जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा शदीद है, गर्म है। और ये जब खाएंगे तो थोहर का दरख्त खाने को दिया जाएगा, जो कांटेदार घास है, जिसका एक एक लुकमा हलक में उतारेंगे वो उतरेगा नहीं, उससे भूख भी नहीं मिटेगी, अजाब और अजाब में इजाफा होगा। और फिर वो कहेगा कि लेकिन जिसको ना निगले चैन तो ना उगले चैन, ना निकाल सकेंगे ना अंदर डाल सकेंगे, तो कहेंगे पानी पानी, अब इसको अंदर कैसे लेकर जाएं, पानी। तो जब पानी मांगेंगे ना तो इनको वो पानी दिया जाएगा जो हमीम है, जो पता नहीं पत्थरों को या किस धात को पिघलाया होगा, तो जो लिक्विड फॉर्म में उस जहन्नुम के अंदर भी, इतने टेम्परेचर के अंदर भी वो लिक्विड रहे, ये जहन्नुम का मशरूब है। और जब वो इसका प्याला अपने मुंह के पास लाएगा, अल्लाह अकबर, तो उसकी पूरी जो स्किन है और जो गोश्त है चेहरे का, वो सब मेल्ट हो जाएगा और उसके अंदर गिर जाएगा। फिर भी ये पिएगा उसको, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं। और जब ये अंदर जाएगा, तो कभी आपने चाय का भी एक गर्म घूंट पी लिया हो तो आपको पता है कि कैसे जुबान जल जाती है, और इंसान जल्दी से उसको हलक से उतार देता है और फिर अंदर जाके पता नहीं चलता, मगर ये अंदर जाके भी बॉयल होगा, इतना बॉयल होगा और अंदर से उसकी आंतें काट देगा। कभी किसी को कभी फूड पॉइजनिंग हुई हो, जो पेट में दर्द उठता है एक गंदा खाना खाने से, एक जरासीम वाला खाना खाने से क्या हाल हो जाता है, और ये अंदर जाके आंते काटेगा, उसके ऊपर थोहर का दरख्त जो खाया हुआ है वो अंदर, और इससे फिर उसकी आंते कट के पीठ के रास्ते कदमों में जाके गिर जाएंगी। और इसके लिए गस्साक है, यानी जो जख्मों से निकली हुई पस है वो उसके लिए, जो इंसान सोच भी नहीं सकता, इसका जो सोचना भी ना इंसान को कपकपी दे देता है कि ये क्या अजाब है, ये किसके लिए, तागी के लिए। अल्लाह की हदों को तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है कि इंसान गुनाह करता रहे और ठंडे पेटों सोता रहे और आराम करता रहे और उसको ये एहसास भी ना हो कि वो क्या कर रहा है और अपने लिए क्या तैयार कर रहा है। इधर इंसान गुनाह करता है, उधर कुछ तैयार हो रहा है उसके लिए, अल्लाह से वो तौबा कर ले। जहन्नुम तो बैठी हुई है मेरे साथ में, किसी को कह दिया जाए ना आपका दुश्मन ना आपकी घात में लगा हुआ, वो कहीं छुप के, तो इंसान क्या सोचता है, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। हाय दुश्मन हमारे, वो दुश्मन है, कई खानदानों में दुश्मनियां होती हैं, उनको पीछे से उनकी दुश्मनियां चली आ रही होती, उनको नहीं पता होता किधर वो निकलेंगे, उनको कोई गोली मार देगा, उनको नहीं पता होगा कहाँ पे उन्होंने किसी को हायर कर लिया और किधर उनको किस तरह नुकसान पहुंचा देगा, किधर उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट कर देगा, किधर उनको क्या कर दे। जहन्नुम सोचे, वो अगर हंट करने के लिए तैयार बैठी है तो सोचे इंसान को नींद कैसे आ सकती है, फिर इंसान किस तरह आराम से बैठ सकता है। और फिर ये नहीं कि कोई अब कोई इसको देखे बगैर ही चला जाएगा, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम्हें से कोई एक नहीं होगा, मगर हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है, हर एक को गुजर के जाना है। वो हंट करेगी पुल से रात पे से, वो एक जंप लगाएगी और उसकी आग का शोला आदमी को अपने अंदर ले जाएगा, झपट लेगी। वो ताक में बैठी है ना, पहचानती है मुजरिमों, वो तो हशर के मैदान में भी काबू में नहीं आ रही होगी कि मैं किस तरह इनको झपट लूं, मैं किस तरह इनको उचक लूं। फरिश्ते मुश्किलों से उसको चेन्स में बांधे हुए काबू कर रहे होंगे, और वो आपे से बाहर हो रही होगी गुस्से में। उसका गुस्सा किसके ऊपर है कि ये कैसे इन्होंने रब की नाफरमानी की, ये कौन होते हैं उस रब की नाफरमानी करने वाले। जजा वफाका, बदला है पूरा पूरा। कैसे पूरा पूरा? इसलिए अल्लाह ताला कोई जुल्म नहीं करता, ये ना समझे कि ये जुल्म हो गया। फिर हम सोचें कि उन्होंने तो थोड़ी देर के लिए किया था, उनको इतनी लंबी सजा अहकाब की क्यों दी जा रही है? इसलिए इसका रीजन ये है कि अगर वो दुनिया में अहकाब के बराबर भी जिंदगी गुजारते तो भी यही कर रहे होते, तो भी ऐसे ही होते, कोई डिफरेंस ना होता। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए उनको ये सजा दी जा रही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जहन्नमी इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि अगर उनके आंसुओं में कश्तियां चलाई जाएं तो चलने लगे, खून के आंसू बहाएंगे, पानी के आंसू नहीं होंगे उनके। ये इनका जुर्म क्या था? इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, ये हिसाब की उम्मीद ही नहीं रखते थे कि कोई हिसाब किताब होना। अगर उम्मीद रखते होते तो अपने आप को चेंज ना करते? अगर उम्मीद रखते होते, अगर इनको ये होता कि एक आखरत का दिन है, तो फिर ये क्या अपनी जिंदगी को फिक्स ना करते? क्या गुनाहों से ना बचते? लेकिन इनकी नॉन सीरियस एटीट्यूड रखते थे आखरत के बारे में, इनको परवाह ही नहीं थी। और उम्मीद रखने से क्या पता चला? ये नहीं कहा कि उनको पता ही नहीं था आखरत का, ये नहीं कहा गया। उम्मीद नहीं रखते थे, यानी इनको पता था कि अल्लाह ताला ने ये बताया है, पता था कि ये डरावे दिए गए हैं, कल्ला सयालमून का पता था, तुम्हें पता चल जाएगा जल्दी, लेकिन इनको परवाह ही नहीं थी। आज मुसलमानों की भी यही मेंटेलिटी नहीं है? या आप किसी को जाके अगर कयामत के दिन का बताएं, हिसाब किताब का बताएं, अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही की डरावा दें, तो क्या कहते हैं आगे से? लेक्चर ना दो, बस करो, बस डराने वाली बातें ही ना शुरू किया करो, बस शुरू हो गए अपने लेक्चर। यानी उनको ऐसा लगता है कि या तो उनको ये लगता है कभी आना ही नहीं ये दिन, या तो उनको लगता है कि आ भी गया तो हमें तो कुछ भी नहीं होना। इसीलिए तो उनको ये डरावे लगते हैं ना, कि ये ऐसे ही डरावे हैं, कुछ और हकीकत नहीं है। वरना इंसान को जिस बात का यकीन हो, कभी नहीं हो सकता कि वो एक्शन ना ले, कभी नहीं हो सकता। फिर अगर यकीन आ जाए ये कयामत है, तो कभी नहीं हो सकता कि वो तौबा किए बगैर ही बस गुनाह करता जाए, और अल्लाह की नाफरमानी करके भी उसको परवाह ना हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए यकीन की बात आप इस तरह समझे कि एक दफा कोविड में ये पता चला, ऐसे किसी ने उड़ाई भी थी खबर के शॉर्टेज होने वाली है, चावल की शॉर्टेज हो जानी है, और चावल नहीं मिलने या दालें नहीं मिलनी और पीछे से आनी बंद हो जानी है कोविड की वजह से। यकीन जाने के ग्रोसरी स्टोर भर गए, शेल्फ खाली हो गए, जिसने एक बोरी उठानी थी उसने 10-10 उठाई कि हम अपने घरों में स्टॉक कर लें। दालों के एक नहीं 10-10 पैकेट उठाए, कहीं कम ना हो जाए। लोगों ने इतना खरीदा, स्टोर के स्टोर खाली कर दिए, सिर्फ किसी की एक बात पे यकीन था ना इतना कि शॉर्टेज हो जानी, तो किस तरह भागे? जो खुद भाग नहीं सकता था उसने दूसरे को कहा मेरे लिए भी ले लेना। खुद सोचिए, ये होता है यकीन, कि जब इंसान को यकीन आ जाता है ना, वो आराम से तो नहीं बैठता, वो भागता है फिर। जिसको यकीन नहीं वो बैठे रहे होंगे। वो यकीन इंसान को एक्शन की तरफ लेकर जाता है। कैसे हो सकता है कयामत का, हम कहें कि हमें यकीन है कयामत आनी, लेकिन हमारे अमल से तो कोई भी नहीं पता चल रहा। हमें कोई फिक्र ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं, कोई अमल को बदलने का कोई भी शौक नहीं, कोई भी जरा एहसास नहीं कि ये मैं क्या कर रही हूं, मेरे किधर जाना है, मुझे तो जवाबदेही देनी होगी, मेरे से तो ये पूछा जाएगा मैं ये क्या कर रही हूं, ये सोच ही नहीं कहीं। ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। इंसान वक्त वेस्ट करता जा रहा है, वक्त जाया होता जा रहा है, दिन के दिन गुजरते जा रहे हैं, वो अपनी बर्थडेज मनाता जा रहा है, उसको पता चल रहा है मेरे इतने साल हो चुके हैं, कितने रह गए होंगे, कितने ज्यादा मैक्सिमम रह गए होंगे, कितनी अगर 100 साल भी मेरी उम्र हुई तो कितने रह गए हैं, उसको पता है कि मेरे दिन कम हो रहे हैं, और जूं ही आंख बंद हुई वो सामना करना पड़ेगा वहां पे, फिर भी उसको कोई एहसास ही नहीं, फिर भी उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, ऐसे जैसे कि कोई मसला ही नहीं है। आखिरत तो उसके मसलों में कोई मसला है ही नहीं, उसके प्रॉब्लम है ही नहीं आखिरत। और उसका प्रॉब्लम क्या है? वो बच्चों को स्कूल में उसमें दाखला नहीं मिल रहा, और बच्ची की शादी नहीं हो रही, फलां बेटे का वो उसका करियर नहीं आगे बढ़ रहा, हस्बैंड की प्रोमोशन नहीं हो रही, अच्छा कारोबार सही नहीं चल रहा, अच्छा जी बच्चा देखो इस सब्जेक्ट में पीछे रह गया, उसकी फलां यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दाखिल हुआ, स्पोर्ट्स में नहीं आगे निकला, वो इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, ये तो ये परेशानियां खत्म होंगी, महंगाई बहुत बढ़ गई, ये परेशानियां इतनी ज्यादा तो मेरे पास है, मुझे आखरत की क्या फिक्र? आखरत का यकीन होता तो फिक्र होती ना, ना आखरत के सोचने के लिए मेरे पास टाइम है, ना आखरत के लिए सोचने के लिए मेरे लिए कोई कोई एफर्ट है करने के शौक है, ना ही उसकी कोई मुझे प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे इतना यकीन ही नहीं। आएगी तो वो वाला यकीन है, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आखरत के इनकार के भी ना डिफरेंट तरीके होते हैं, तो बच जाएंगे वहां पे, कुछ भी नहीं है ऐसे, ये बातें कुछ नहीं होता। ये जब एटीट्यूड होगा तो समझ ले आखरत का इनकार ही तो कर दिया, फिर वो होना या ना होना इट्स इक्वल। अगर उनमें से कोई भी चीज है कि कोई बचा लेगा, या हम चहीते बहुत हैं, लाडले बहुत हैं, बड़ी लाडली उम्मत में से हैं, या फिर हमें वहां पे भी वही चीज मिल जाएगी जो यहां पे मिली हुई है, कोई हमें बचाने वाला वहां पे मौजूद है, इसमें से कोई भी चीज है जहन में, तभी है ये बेफिक्रियां। वरना जो इंसान यकीन रखता है ना इन आयात के ऊपर, वो फिर इतने आराम से नहीं बैठ सकता। आप सोचें कि वो तो इतने नेक लोग थे, इतने नेक लोग क्या कह रहे हैं कि वो परेशान है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान है किस बात से, कि कौन सी उनको परेशानी है, वो तो सिद्दीक अकबर हैं, वो तो वो हैं कि जो इनको यानी अल्लाह ताला ने बशारत दे दी है, दुनिया में ही बशारत मिल गई हुई है उनको जन्नत की, वो तो वो लोग हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं, वो तो वो लोग हैं जिनके लिए कोई परेशानी नहीं, सबको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से उनको मिल गई हुई है खुशखबरियां, फिर उनको क्या परवाह है। लेकिन उनका हाल क्या था? फरमाते थे काश कि मैं एक तिनका होता, काश कि मैं एक तिनका होता, मुझे मैं दुनिया में ना आता, काश मैं एक दरख्त होता जो काट लिया जाता। उनकी फिक्रें आप देखें कि इतनी ज्यादा फिक्र, हजरत उमर तहज्जुद में खड़े सूरह तूर पढ़ रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बी कल वाक़े मा लहू मिन दाफे, बेशक तेरे रब का अज़ाब जरूर आके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इतनी ज्यादा उन्होंने इसको अपने दिल पे असर लिया कि 1 महीने तक बीमार पड़े रहे, लोग बीमार पुरसी करने आते थे, उनको पता नहीं था कि क्या चीज है जिन्होंने जिसने इनको बीमार किया। खुद सोचे। और अब शहीद कर दिया गया था उनको, और जब नमाज में थे जिस वक्त उनको खंजर मारा गया था नमाज में, ऐसा इंसान तो सोचे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से उन्होंने भी इतनी बड़ी बात बिशारत सुनी हुई थी कि जन्नत में जाएंगे, लेकिन हाल ये था कि रो रो के चेहरे के ऊपर लकीरें पड़ गई थी। इतना ज्यादा डरते थे कि जिस वक्त शहादत का वक्त था, आखिरी वक्त था, तो उस वक्त क्या फरमा रहे हैं कि मैं बराबर सराबर भी मेरा हिसाब हो जाए तो काफी है, यानी या मुझे नहीं, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं भी मिलता मेरे पे, बस मुझे अल्लाह ताला छोड़ देना तो बस काफी है। फरमाते थे अगर आसमान से कोई पुकारने वाला पुकारे, है लोगों तुम सब जन्नत में दाखिल होगे सिवाय एक आदमी के, मुझे तो लगता है कि वो एक आदमी मैं ही ना हूं, इतना ज्यादा डरते थे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोती थी जहन्नुम की आग को याद करके। अब्दुल्ला बिन उमर, उन्हों को ठंडा पानी पीने को दिया गया तो रोने लगे और बहुत ज्यादा रोए, तो उनसे पूछा आप क्यों इतना रोते हैं? फरमाते हैं मुझे कुरान मजीद की आयत याद आ गई कि जहन्नमी ख्वाहिश कर रहे होंगे ठंडे पानी की और वो महरूम रखे जाएंगे इससे, और उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होगी कि हमें बस पानी मिल जाए, पानी, सिर्फ एक ख्वाहिश। वो जन्नत वालों से भी सूरह आराफ में आता है, वो जन्नत वालों से भी कहेंगे हमें थोड़ा सा पानी ही दे दो। अल्लाह अकबर, वो इतनी फिक्र रखते थे, वो जहन्नुम को कभी याद भी करते थे, हमने तो कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि हमें ये होता है कि हमारी कहीं मजे हमारे खराब ना हो जाएं अगर जहन्नुम को याद करेंगे। वो याद करते थे तो रोते थे ना, हम कभी याद भी नहीं करते जहन्नुम कैसी है। मालिक बिन दिनार फरमाते ना, अगर मेरे बस में होता कि मैं नींद ना करूं तो मैं कभी ना सोता, इस डर से कि सोते में कहीं मुझ पे अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए, और अगर मेरे पास मददगार होते तो मैं सारी दुनिया में ऐलान कराता, लोगों आग से बच जाओ, लोगों आग से बच जाओ, लोगों आग से खबरदार हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना, लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है, मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात इतनी दफा दोहराए, मुसलसल दोहरा रहे थे, और आपकी आवाज इतनी ऊंची हो गई जैसे जैसे कोई तड़प रहा होता है ना कि इनको पता चल जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हो गई, ऐसे कि आपकी आवाज इतनी बुलंद थी कि बाजार वाले भी आपकी आवाज सुन सकते थे, लेकिन आप बेखुदी के आलम में यहाँ अल्फाज दोहराए जाते थे, लोगों मैंने तुम्हें डरा दिया, लोगों मैंने तुम्हें, और आपकी चादर मुबारक कंधों से सिरक के आपके पैरों में गिर गई। इतने पैशन और इतने जोरदार तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि यानी फिर ना कहना कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं था, फिर ना कहना कि तुम्हें किसी ने डराया नहीं, फिर ना कहना हमें पता ही नहीं था, वरना हम इसकी तैयारी कर लेते, इसे बचने का इंतजाम करते। क्यों हजरत रबी बिन कईस जो थे वो दरिया फुरात के किनारे एक तंदूर था, जब वहां से गुजरे हैं अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ, अल्लाह अकबर, तो तंदूर को देखा और उसके अंदर जब आग भड़कती भी देखी, अब्दुल्ला बिन मसूद ने आया तिलावत फरमाई कि जब जहन्नुम काफरों को दूर से देखेगी तो वो इसका चीखना चिंघाड़ना सुन लेंगे। ये सुन के वो रबी बिन खैसम बेहोश होके गिर पड़े, लोग चारपाई पे उठा के लेकर आए उनको, सुबह से लेके जुहर तक बेहोश ही पड़े रहे, इतना उनके ऊपर असर होता था, इतना वो खौफ करते थे। वो नेक लोग थे, या हमें डरना नहीं चाहिए? क्या डरना बुरी बात है? क्या हमें इन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहिए जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया? तो ये वो लोग थे जिनको उम्मीद ही नहीं थी, इनको कोई फिक्र ही नहीं थी, इनके लिए कोई मसला ही नहीं था आखरत, क्योंकि इनको यकीन ही नहीं था आखरत पे, इनको उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ऐसा हो भी सकता है। कज़्ज़बू भी आयात ही ना किताब, उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को जैसे झुटलाया जाता है। यानी कुछ नहीं होता। पहले हमने पढ़ा ना वैलू योमा इतनिल मुकातिबीन, तो तकजीब करना कि सिर्फ ये तकजीब करना सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे मैं नहीं मानता, वो इससे आगे होता है कि वो उठ के ये भी कहना शुरू कर दे कि जो है ना तुम झूठे हो, ये गलत है, ये ऐसी बातें हैं, ये खुद ही बनाई नहीं है, ये मौलवियों के ढकोसले हैं, ये ऐसे ही डरावे हैं। तो वो हमारी आयतों को झुठलाते थे जैसे झुठलाया जाना होता है। इसी तरह और भी आयात को झुठलाना सिर्फ कयामत की ही नहीं, बल्कि जो नहीं पसंद आए बस उसके ऊपर कह दिया ये तो ऐसे ही बातें, ये तो ऐसे ही 1400 साल पहले की बातें हैं, ये तो ऐसे ही आजकल कैसे हो सकता है, देखो जी जी ये अमल करना बड़ा जी मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये मेरा तो दिल ही नहीं इसके ऊपर मानता जी। कज़्ज़बू बी आयातिना किताबा, अल्लाह अकबर। और कई लोग कहते थे, आगे उसकी बात आ रही, कई लोग कहते उस वक्त भी कहते थे आज भी कहते हैं, लो अल्लाह ताला ने कोई इतनी छोटी छोटी बातों को पूछना, लो इतनी छोटी बातों के ऊपर उसने तवज्जो देनी, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो इतनी मामूली बात है सारी दुनिया करती है, भला वो इतनी सी बात को पूछेगा, ऐसे ही आप लोग तो करते। फरमाया वकुल्ला शय इन आसईना हु किताबा, हर चीज लिखी हुई है किताब में, हर चीज का शुमार किया गया, गिन गिन के लिखी हुई है। आसईना ऐसे ही है जैसे अहाता करना, अहाता किया हुआ है हर चीज का किताब में। अल्लाह ताला खुद तो गवाह है ही, वो खुद देख रहा है, वो खुद बाखबर है, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी, इसलिए ताकि तुम्हें कोई एक्सक्यूज ना रह जाए, जब चीज लिखी हुई सामने आ जाए तो आप कैसे कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ और मैंने ये नहीं किया। हर चीज तुम्हारी तो गिनी हुई है, सिर्फ बोल ही नहीं गिने हुए, हर एक्शन गिना हुआ है, हर आंख की जुम्बिश गिनी हुई है, हर नीयत और हर इरादा और हर अमल और हर कदम सब गिने में, एक एक बोल को गिना हुआ है। हमें तो खुद अपनी नहीं बात याद रहती है कल हमने क्या किया और क्या कहा था, लेकिन वहां पे सब गिन गिन के रखा गया। तो इसलिए कभी ये ना कहो इतनी छोटी सी बात का अल्लाह ताला पूछेगा, छोटी या बड़ी सब उसमें होंगे, वो दी अल किताब, उस दिन रख दी जाएगी किताब, मुजरिम उसको देख के डर रहे होंगे और कहेंगे ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसमें तो कोई छोटी बड़ी कोई बात ही नहीं है जो रह गई हो, हर बात ये कैसी किताब है, ये किस किस्म की किताब है, इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ, यानी अपना आमालनामा अपना ही रिकॉर्ड देख के इंसान डर रहा होगा, किसी और का नहीं दे दिया जाएगा, जैसे दुनिया में थोप दिया जाता किसी और का इल्जाम किसी के ऊपर, किसी को भी कमजोर समझ के उसके सर डाल दिया जाता है, ये वो नहीं है, तुम्हारी अपनी किताब है, और अपनी किताब देख के ही इंसान डरेगा, क्या इसमें तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात लिखी है, एक एक निशान, एक एक सजदा, एक एक दुआ, एक एक तस्बीह, एक एक झूठ, एक एक मजाक, एक एक आंसू, हर चीज ही लिखी हुई है, भागू तो भागू कहां, इसीलिए तो इंसान कहेगा ऐन अल मफर, कि भागने की जगह कहाँ है, तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, उसको बताया जाएगा, बता के फिर आगे अजाब है, ये नहीं बताए बगैर, देखो खुद देखो, अल्लाह ताला फरमाएगा आज तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफी। आया ना हमने सूरह क़ियामत में पढ़ा, वलहु अल्क़ा मआज़ीरा, जितनी मर्जी माजरतें करे उसको खुद ही पता है, बरेल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, इंसान को खुद बड़ी अच्छी तरह पता है वो क्या कर रहा है। फदूकू फलन नसी तकुम इल्ला अजाबा, बस चखो क्या अजाब, फलन नसी तकुम, तुम्हारे लिए कुछ और चीज नहीं बढ़ाई जाएगी, एक ही चीज बढ़ेगी तुम्हारे लिए, वो अजाब है। वो हसरीन कहते हैं उसमें अब्दुल्ला बिन उमर से भी ये रिवायत है कि इससे बढ़ के शदीद आयत पूरे कुरान में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा खौफनाक आयत है, यानी एवरी डे के साथ जब वो जहन्नुम में जाएंगे तो हर दिन के साथ अजाब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, जैसे जन्नतियों के लिए नेमतें बढ़ती जाएंगी ना, वो कभी उसमें बोर नहीं होंगे कि भाई एक ही नेमत, ये तो कल भी खाया था, ये तो कल भी देखा था, ये तो कल भी मैंने एंजॉय किया था, अब क्या यही चीज होंगे, मैं तो बोर हो गई। जन्नत में बोरियत नहीं है, उनकी नेमतें बढ़ती जाएंगी। इसी तरह जहन्नमियों का अजाब बढ़ता जाएगा। और बाज लोग कहते हैं वो जो तो उसमें जहन्नुम में होंगे तो यूज टू ही हो जाएंगे जहन्नुम की आग से। नहीं, कभी यूज टू नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि वो अजाब बढ़ता जा रहा है, वो अजाब मजीद उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो क्या उनका हाल होगा आज जो जहन्नुम खामोशी से बैठी हुई है, उसको खामोश ना समझो, इसलिए खामोश है कि जैसे शिकारी या शेर या दरिंदा अपने शिकार के लिए चुप करके ही तो बैठता है, और वो जो शिकार होता है ना उसको पता नहीं होता, वो मजे से हिरन ग्रेज कर रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, घास खा रहे हैं, मजे में हैं, उनको पता ही नहीं है कि कोई शेर इस झाड़ी के अंदर बैठा हुआ मेरे इंतजार में। इतना मिरसात के लफ्ज से ना हमें समझ आ जाती है कि देखो ये अजाब जो है, ये आज अगर गुनाह करके इंसान को कुछ भी नहीं नजर आता, मैंने झूठ बोले, मैंने फ्रॉड किए, मैंने इल्जाम तराशियां की, झूठे सच्ची बातें की, इधर उधर गीबतें की, मैंने वक्त को जाया किया, मैंने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कोई बीमारी लगी, ना मेरा कोई नुकसान हो गया पैसे का, तो शायद कुछ भी नहीं होना। इसलिए कि ये जो है ना जहन्नुम मेरे साथ में अभी खामोशी से बैठी हुई है और देख रही है, बस देख रही है और वेट कर रही है, जब इंसान इसकी रीच में आ जाएंगे फिर ये 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। हाँ, जैसे जानवर बेखौफ होके चरता चुकता रहता है, तो जो इंसान इस इन जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा ना कि बेखौफ होके, उसको कोई डर नहीं, उसको कोई परवाह नहीं, फिर उसके लिए वहां पे खौफ है, क्योंकि अल्लाह ताला दो अमन और दो खौफ जमा नहीं करेगा। यहां पे अगर डर गए और यहां पे अपनी जिंदगी को सीधा कर लिया, अगर देखिए वो हिरन चौकन्ने हों और वो समझते हों कि भाई किसी वक्त भी हमारे पर हमला हो सकता है, तो बेपरवाही से चुगते थोड़ी फिरे। दरिंदा किसका शिकार करता है, जो जितना बेपरवाह है उसके ऊपर एक जंप लगाता है। ये पूरी कहानी है इसके पीछे, अगर समझ जाओ तो, कि आज अगर इन जानवरों की तरह ही तुमने जिंदगी गुजारी, खाते पीते रहे, मजे करते रहे, उठे बैठे बस इधर बैठ गए उधर बैठ गए, इधर गपशप कर ली, उधर बातें कर ली, उधर सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम गुजार लिया, उधर वेकेशन पे चले गए, उधर नाच लिया गा लिया, उधर बस ये ही जिंदगी है, बस उठे और आज क्या फन है और आज क्या करना है, और इधर कमाया और उधर फन किया, इधर कमाया उधर फन किया, बस यही कमाई का भी वजह यही है कि भाई फन करना है, इंजॉयमेंट, बस इंजॉय करते ही चले गए यहां से, और तुमने कभी भी डर महसूस नहीं किया कि एक दिन आने वाला है जहां पे इतनी बड़ी बला बैठी हुई है, इंतजार में बैठी हुई है, इसको जहन्नुम ना कहें, इसको बला कहें, एक बला पकड़ने के लिए बैठी हुई है। तुम दुश्मन भी तुम्हारा होता है अगर दुनिया के अंदर, तो उससे भी चौकन्ने हो जाते हो, वो इंसान ही हो जिसका पता तुम्हें हो कि वो तुम्हारी घात में बैठा है, तो तुम्हें चैन नहीं आता, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, कितना अपनी सेफ्टी के लिए इंतजाम करते हैं, आगे पीछे बॉडी गार्ड खड़े कर लेते हैं, फिर सिक्योरिटी के इंतजाम और कर देते हैं, घरों में क्या क्या इंतजाम करते हैं, ऐसे सिक्योरिटी के बाहर जाते, बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन के जाते हैं कि जी हमारे तो दुश्मन है, वो तो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, एक इंसान के पीछे इतना इंतजाम करते हो, ये उसके साथ दुश्मनी है, वो घात लगा के बैठा होगा, जहन्नुम से नहीं डर लगता कि वो घात लगा के बैठी हुई है, फिर भी तुम इतने बेपरवाह जैसे ये जानवर है जो खाते पीते और आराम करने बैठ गए, और उनको पता नहीं है कि उनके लिए कोई बैठा हुआ है, तुम्हें अल्लाह ताला ने बता दिया, ये उसकी रहमत है, तुम्हें सब चीजें बता दी, तुम्हारे नबी ने ऐलान कर करके बता दिया, फिर भी इंसान सोया रहे, जागना ही ना चाहे, और उसको परवाह ही ना हो, कभी इस तरफ उसकी सोच ही ना जाए, तो ऐसों के लिए फिर जहन्नम मिरसाद है। तो फजूकू फलन नजीदकुम इल्ला अज़ाबा। अब ये नहीं कि यहाँ पे मजे कर रोगे, अब इस तो अब हम यूज टू ही हो गए, जैसे कुछ लोग गर्मी में रहने के यूज टू हो जाते हैं तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास पंखा नहीं भी है, एसी नहीं भी है, क्योंकि वो हमेशा से उसमें रहते हैं। तो हम कहते हैं इनको तो आदत ही है जी इस तरह रहने की, ये तो मतलब डेजर्ट में रहते ही हैं तो इनको गर्मी की आदत है, हमें नहीं आदत, तो उनको आदत कैसे पड़ गई रहते रहते। तो ऐसा नहीं है कि जहन्नुम में रहते रहते उनको आदत पड़ जाएगी, इसलिए कि अजाब बढ़ता ही जाएगा। तो ये सख्त तरीन आयत गुनाहगारों के लिए पूरे कुरान में सख्त तरीन है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये आग धीमी नहीं होगी, जब धीमी होने लगी इसको और भड़का दिया जाएगा। ये आग बुझेगी नहीं कि जैसे दुनिया की आगे होती है कि आज जल जल के एक दिन तो बुझ ही जाती है ना, अब जितनी भी बड़ी आग लगा लो खुद ब खुद एक दिन बुझ जाएगी, खुद ही बुझ जाएगी ना भी बुझाए तो। ये वो आग नहीं है। इसीलिए तो फरिश्ते तक भी, जिनके लिए ये जहन्नुम नहीं है लेकिन वो भी जहन्नुम को देख के कांपते थे, आपसे सलम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके कंधे कांपते रहते हैं। अब वो पता है मालिक फरिश्ता जो है कभी नहीं हंसा, कभी मुस्कुराया भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो जहन्नुम को देखने वाला है। वो डरते हैं अल्लाह के अजाबों से, डरते हैं। हालांकि उनके लिए जहन्नुम नहीं है, उनके लिए जहन्नुम में जाना भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज पे गए थे तो देखा था सब फरिश्ते खुश हुए आपसे मिलके, एक जो मालिक फरिश्ता है वो खुश नहीं हुआ, उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। तो पूछा ये क्यों नहीं खुश हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब से जहन्नुम को पैदा किया गया ये इसी तरह है, कभी नहीं हंसा, कभी खुश नहीं हुआ। और ये फरिश्ते वहां पे वो मुकर्रर है, गिलाज़ुन शिदाद, हमने पहले पढ़ा था बहुत सख्त है, बहुत सख्त, उनके अंदर रहम नहीं। ये फालूना मा युमारून, वो ही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता, उनके अंदर रहम का जज्बा है ही नहीं अल्लाह ने डाला। और इंसान भी ना किसी को तकलीफ में बहुत ज्यादा देख लेना तो उसका दिल पसीज जाता है, कहता चलो बस करो छोड़ दो, किसी के ऊपर भी कोई किसी को मार रहा है कुछ है उसी से दिल पिघल जाता है। लेकिन ये फरिश्तों के दिल पिघलेंगे नहीं कि वो इतने अजाब में देख के लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, फरियादे कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ एक उनकी डिमांड होगी कि ए मालिक फरिश्ते अल्लाह ताला से क्या समझे, सिर्फ एक दिन की ब्रेक दे दे, सिर्फ एक दिन की ब्रेक दे दे, हम नहीं कह रहे हमें निकाल ले यहां से सिर्फ, लेकिन एक दिन की तो ब्रेक दे दे। वो एक दिन की भी ब्रेक नहीं मिलेगी, ला बिसीना फीहा काबा। एक दिन कोई चलो उनको रेस्ट दे दिया जाए, एक दिन कोई चलो अजाब थोड़ा सा कम कर दिया जाए, एक दिन कभी नहीं होगा। दुनिया में तो जेलों में मुजरिमों को टॉर्चर किया जाता है तो टॉर्चर में भी ब्रेक दे देते हैं, इसलिए वो कहते हैं ये मर ही जाएगा, वहां पे मौत है ही नहीं, उनका टॉर्चर कभी खत्म नहीं होगा। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा, बेशक जो मुत्तकी लोग हैं, मुत्तकी कौन, जो अल्लाह से डरता है और बचता है, जिसने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी कि कहीं मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। ये पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। मुत्तकियां उनके लिए मफाज है, कामयाबी है। जब इंसान ये सारा पढ़ता है ना फिर वो सोचता है ना कैसे बचूं, क्या ऐसा करूं कि मैं बचूं, तो फरमाया मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी के लिए कामयाबी। मफाज के अंदर निजात हासिल करने का माना है। मफाज सिर्फ ये नहीं है कि इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए, मफाज असल में क्या है, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. जो जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया, असल में वो है फाज, वो जो है कामयाबी, जिसको यहाँ पे मफाजा कहा गया ना, वो है कामयाबी कि इंसान जहन्नुम से बच जाए वो फिर जन्नत में दाखिल हो। जहन्नुम का एक लम्हा भी देख लिया तो खत्म हो जाएगा उसका सुकून, सब कुछ भूल जाएगा। तो इसलिए जहन्नुम से बच के जो जन्नत में दाखिल हुआ वो असल कामयाब तो वही है। और लोग कितने आराम से कह देते हैं, कोई नहीं जहन्नुम में 2-4 दिन काट लेंगे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं जहां सारे जा रहे होंगे हम भी चले जाएंगे तो क्या हो गया। अल्लाहु अकबर। तो ये इतनी बड़ी मुसीबत से जो बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब है। हदायक व अनाबा, उसके लिए बागात है और अंगूर है, ये वो कामयाबी है कि इसके बाद कभी कोई नाकामी नहीं है, उसके बाद कोई खौफ नहीं है, उसके बाद कोई डर नहीं है, उसके बाद कोई मौत नहीं है, उसके बाद कोई बीमारी नहीं, कोई नाकामी नहीं। ये है असल कामयाबी। दुनिया की कोई भी कामयाबी असल कामयाबी नहीं है, दुनिया की कोई भी कामयाबी को हम मफाज नहीं कह सकते, ये अधूरी है कामयाबियां, ये टेम्परेरी है कामयाबियां। असल कामयाब वो है जो वहां पे, जिसके लिए ऐलान हो जाए कि ये फलां कामयाब हो गया, जो पुल सिरात पार कर जाए और जो जन्नत में दाखिल हो गया। एक दफा दाखिल हो गए तो फिर कोई निकालेगा नहीं कभी वहां से, उसके लिए फिर बागात है और अंगूर है। और बागात और अंगूर क्या है, अंगूर का क्यों जिक्र किया गया, अंगूर पीने के लिए भी और खाने के लिए भी यूज होता था, अंगूर से शराब भी बनाई जाती थी, अंगूर में इतना रस होता है कि वो इंसान के पीने के लिए भी होता है, और ये वो भूख और प्यास मिटाने के लिए नहीं खा पी रहे होंगे, बल्कि वो किस लिए खा पी रहे हैं, मजे के लिए, लज्जत के लिए। जैसे दुनिया में आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, एनर्जी के लिए नहीं खा रहे होते, आपको नरिशमेंट के लिए नहीं खा रहे होते, वो सिर्फ आपको वो मजे की लगती है इसलिए खाते हैं। तो जब वो इंसान वहां पहुंचेगा तो पहले तो वो अब इतनी ह्यूज अपनी जन्नत देखेगा, जन्नत के बागात देखेगा, अपनी बादशाहत को देखेगा, और फिर उसके लिए उसको सर्व करने के लिए फौरन जन्नत के मेवे लाए जाएंगे। फिर इंसान कोई भी जगह पे होता है उसका मजा अधूरा रह जाता है अगर उसकी कोई कंपनी ना हो, कोई कंपेनियनशिप चाहता है वो, और कंपेनियनशिप के लिए उसके लिए वो मर्द है तो उनके लिए वो लड़कियां जो अतराबा हम उम्र होंगी, ऐसी कवायब मैंने आपको बताया काब से, ये टखने को कहते हैं एंकल, ये भी उभरा होता है ना, जैसे आप देखते हैं इनके सीने उभरे हुए होंगे, ये इनकी ब्यूटी के लिए बताया गया कि इतनी खूबसूरत होंगी, और हम उम्र होंगी, हम उम्र इसलिए कहा गया कि इंसान हम उम्र के साथ ज्यादा उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, कोई बहुत छोटी उम्र का हो और बंदा बड़ा हो तो फिर भी इतनी उम्र के फर्क की वजह से ना कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, और कोई बड़ी उम्र का हो तो उसके साथ भी नहीं हो सकती। तो जो साथ की उम्र के होते हैं वो उनके आपस के अंदर वो एज गैप नहीं होता, तो आपस में वो ज्यादा एक दूसरे के साथ एक जैसे शौक, एक जैसी बातें होने लगती हैं, कंपेटिबिलिटी ज्यादा होती है। तो वो आदमी भी इसका मतलब जवान होंगे और वो औरतें भी जवान होंगी, 33 ईयरों की उम्र जन्नती होंगी, आदम अलैहि सलाम जैसा कादोत का और यूसुफ अलैहि सलाम जैसा हुसन होगा, और हर दिन अपने कंपेनियन के साथ, अपने साथी के साथ ऐसा होगा जैसे न्यूली वेड होते हैं, जैसे नई नई शादी होती है तो उसका एक चाम और एक मजा ही अलग होता है, वो एक वो बाद में उम्र में जाके वो बात नहीं होती, जब नई नई शादी होती है तो वो जो मर्द और औरत एक दूसरे के साथ जैसे उनके उस वक्त एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, वक्त असंध्या का और छलकते हुए जाम होंगे, ऐसे जाम जो इतने भरे हुए हैं कि जैसे कि छलक रहे हों, और दूसरा ये भी कि स्पार्कलिंग चमकते हुए, तो यानी ऐसे लगता है ना कि एक पार्टी टाइम है, साथी भी है, काम भी करने को कुछ नहीं, और नेमतों पे नेमते हैं, मजों पे मजे हैं। जन्नत है असल मजे की जगह, दुनिया मजे की जगह नहीं है जिसको हमने मजे की जगह बना लिया। ये दुनिया अमल की जगह है ताकि मजा कर सके। आप देखें, आप सब ये बात को समझते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो उसके बाद फिर हम मजा करते हैं। तो दुनिया में मेहनत की तो आखरत में मजा किया। जो लोग यहीं पे मजे की जगह बना लेते हैं और उस मजे करने में कि बस यहाँ पे परफेक्शन हो, यहाँ पे ये मजा, यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे ये इंजॉयमेंट हो, फन हो, इसी को बना लेते हैं, फिर आखरत भूल जाती है, गफलतें तारी होने लगती हैं। बहुत जल्दी इंसान ये सबक भूल जाता है, बहुत जल्दी जन्नत के शौक खत्म हो जाते हैं, जहन्नम का खौफ खत्म हो जाता है, जब इंसान दुनिया में पड़ने लगता है, इसी के मजे, इसी की लज्जतें, इसी की एंटरटेनमेंट, इसे भूल ही जाता है कि वो आखरत भी है। ला यस्मऊना फीहा लग़्वन वला किद्दाबा, नहीं वो सुनेंगे उसमें कोई लग़ बात और ना कोई किद्दाब, कहते झूठ को कहते ना, कोई झूठी बात नहीं, यानी बेफजूल बातें, बेफजूल कमेंट्स और ऐसी झूठी सच्ची बातें जैसे आजकल मीडिया में होती हैं, या और लग़ बातें, या और टॉर्चर देने वाली बातें, हर्ट करने वाली बातें, किसी के तंज, किसी के ताने, किसी की गीबत, किसी की इल्ज़ाम तराशियाँ, कोई या ऐसी खबर जो कि नफ्स पे घरां गुजरे, इंसान कहता है कि आज तो सुबह से ही मेरी तबीयत बोझल है, आज सुबह से ही मेरे मैं सैड हूँ, क्यों भाई, वो फलां खबर सुन ली थी। तो कभी खबरें भी इंसान को इतना परेशान कर देती हैं, दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये तबाही, कि इंसान के पास सब कुछ भी हो ना तो वो खुश नहीं हो पाता, सुकून नहीं आ पाता, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे होते। अच्छा, फिर बाहर नहीं तो घर के अंदर कुछ ना कुछ होता है, कभी औलाद के मसले, कभी खावंद बीवी के दरमियान आपस के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स, कभी कोई और खानदान में कोई ऐसी परेशानी। तो इंसान इस दुनिया में तो कभी कोई बात सुनता है, कभी कोई सुनता है, उसको चैन फिर भी नहीं होता। तो सारी दुनिया की दौलत भी जमा कर ले, अपने घर को महल बना ले, और उसमें हर नेमत भी आ जाए, सुकून की नेमत और दिल की खुशी की नेमत जो है वो इस दुनिया में मुयसर नहीं आ पाती। अगर ज़रा देर को इंसान खुश होता भी है तो अगले ही लम्हे कुछ ऐसी बात हो जाती कि फिर कुछ मसला खराब, फिर कोई बेसुकूनी, फिर कोई बेचैनी। तो दुनिया में कैसे हो सकता है कि जन्नत बन जाए? इस हमें अपनी असल जन्नत के लिए मेहनत करनी, ना कि हम इसको जन्नत बनाने की कोशिश करते करते ये ना हो कि जिंदगी खत्म हो जाए और इस पे ही खप जाए और ये जन्नत फिर भी नहीं बनेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको जन्नत नहीं बनाया, इसको एक टेम्प्रेरी कयाम की जगह बनाया हमारे लिए ताकि वो हमें आजमा सके। कौन आसान अमल करके आता, असल जन्नत आखरत है। जजा अम्मिर रब्बी का अता हिसाबा, जजा है तुम्हारे रब की तरफ से और अता है काफी करने वाली, किफायत वाली। अच्छा, अब देखिए, एक आया लफ्ज जजा और एक आया अता। जजा क्या होता है? बदला, जैसे जजा विफाका है ना, बदला पूरा पूरा, जैसे जितना आपने काम किया उतना बदला आपको मिल गया, ठीक है, उसको कहते हैं जजा। आपने नौकरी की, जितने घंटे की थी उन घंटों के मुताबिक आपको उन्होंने पेमेंट कर दी, वो है जजा, सैलरी। और एक होती है अता, अता ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे आपको बोनस देते हैं या जैसे आप किसी को टिप देते हैं, तो वो है, वो उसका राइट नहीं है, वो आप अपनी खुशी से कुछ दे रहे हैं। अल्लाह ताला वहां पे जजा भी दे रहा है और अता भी दे रहा है। और देखिए, आप भी जितने ज्यादा दौलतमंद होते हैं उतनी बड़ी आप टिप भी देते हैं, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों में तो कोई कमी नहीं, जब वो अता करने लगेगा तो कितना होगा, बेहिसाब। इसीलिए इसका एक तर्जमा बेहिसाब भी है। दूसरा समझने की ये बात है कि जजा ये ना समझिए कि कि हमारे कामों का बदला अल्लाह ताला वहां पे दे रहा है। देखिए ये सिर्फ अल्लाह ताला इसको जजा करार दे रहा है, ये समझ ले बदला करार दे रहा है उसके एतबार से, यानी वो अपने तौर पे हमारी एक हौसला अफजाई के लिए या हमारी एक शाबाश देने के लिए कह रहा है कि तुम्हारे अमल की जजा अल्लाह ताला देगा उसको। वरना हमारे किसी भी नेकी के ऊपर हमारा हक नहीं बनता कि वहां पे हमें कुछ मिले। क्यों? इसलिए कि जो कुछ हमें दुनिया में मिल चुका है ना, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये हर अमल से जो हम हर नेकी कोई कर बैठे हैं उससे भी बढ़ के है। कितनी नेमतें हमें यहां मिली हुई, अभी आप गिने तो आप गिन भी नहीं सकते इतनी नेमतें। और हर नेमत इतनी कीमती है जिसका कोई मोल ही नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। आप एक जमीन का आराम की जगह बनने की एक नेमत के ले लें, दिन रात की नेमत को ले लें, अपनी आंखों पैरों हाथों कानों की नेमत को ले लें, बोल की नेमत को ले लें, जिंदगी की नेमत को ले, कितनी नेमतें हैं ना, आप काउंटलेस नेमतें हैं। ठीक है, इन नेमतों को जिनका कोई आप कीमत दे नहीं सकते, इनका नेमुल बदल ला नहीं सकते। अब आप मुझे बताएं कि क्या हमारी नेकियां इन नेमतों की कीमत अदा कर सकती हैं? नहीं कर सकती। हम अपनी पूरी जिंदगी भी इबादत करते रहे, जैसे कयामत में एक नेमत एक पलड़े में रख दी जाएगी और इंसान इबादत गुजार की पूरी जिंदगी की इबादत दूसरे पलड़े में रख दी जाएगी, तब भी वो जो एक नेमत एक आंख की नेमत ले लें, एक नेमत होगी वो भारी होगी और इसकी इबादत हल्की होगी। एक नेमत कभी नहीं हम आपको अदा कर सकते, उसकी कीमत नहीं, पेमेंट नहीं दे सकते अल्लाह ताला को कि तूने हमें आंखें दी हैं, इसकी पेमेंट ये है कि मैं नमाज पढ़ती हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये करती हूं। नो, सारी जिंदगी भी करते रहे ना, सजदे में भी पड़े रहे, तो ये सांस इतनी बड़ी नेमत है, इस एक नेमत का हक नहीं अदा कर सकते, इसका बदला नहीं दे सकते, इसकी प्राइस नहीं पे कर सकते, तो बाकी नेमतों की कैसे करेंगे? तो वहां पे जाके फिर हमारा क्या हक बनता है कि हम मांगे, क्योंकि हमने तो वो उसकी भी प्राइस नहीं पे कर सके जो हमें दुनिया में नेमतें मिली थी। अब क्या जन्नत की पे कर सकते जो इतनी नेमतों से भरी हुई है कि उसकी नेमतें कभी खत्म ही नहीं होनी, या इसकी प्राइस पे कर सकते? नहीं कर सकते। तो फिर ये अल्लाह ताला का करम है कि वो अशकूर है ना, वो कदरदानी करता है, वो बंदे ने थोड़ा भी काम किया ना तो कहता है ये तुम्हारी जजा है इसकी, वरना हमारे काम इस काबिल नहीं। हमारे तो जो कुछ नेकी का काम करते भी हैं उसमें भी हजार गलतियां हैं, नमाज पढ़ के भी हमें हुक्म है इस्तग़फार करो, अस्तग़फिरुल्लाह ये कहो, ये इसमें भी पता नहीं कितने ख्याल आता है, कितनी हमने गलत पढ़ी, हक तो नहीं अदा हुआ ना। तो फिर हम कहाँ से ये चीजों का करके फिर समझ सकते हैं कि हाँ जी भाई हमें अब जन्नत और ये तो मिलनी ही चाहिए हमें, और ये तो हमारी हम डिजर्व करते हैं, हमने इतने काम किए जो इतनी हमने नेकियां की, आप कभी डिजर्व नहीं कर सकते, ये तो उस रब की अता है, तो सारा कुछ ही उसकी अता है, मगर वो हमारे इन कामों को देख के कह देता है जजाम भी मैं कह लूँ या अमल हूँ, ये जजा है तुम्हारे अमल की, जो तुम अमल किया करते थे उसका बदला है, ये सिर्फ उसकी करम नवाजी है, ये सिर्फ उसका बड़ापन है कि वो ये कहता है और हमें शाबाश दे रहा है इसके ऊपर, वरना असल में तो अता ही अता है, अता ही अता है, कुछ भी हम डिजर्व नहीं करते। नेकी अगर कर भी ली तो उसने तौफीक दी थी तो की ना, उसने ये आजाद ये थे तो कुछ काम किया ना, क्या कारनामा कर दिया। और फिर अता हिसाब, हिसाब का मतलब एक तो हिसाब से देना होता है, जैसे जैसे हम कहें हिसाब किताब के साथ बदला मिलेगा, वो एक हो गया माना, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे आपको पता है ना जैसे आप कहते हैं हस्बी अल्लाह हुवा निअमल वकील, हस्बी तो वो क्या है, हिसाब नहीं है उसका माना, मतलब काफी है मेरे लिए अल्लाह, तो काफी हो जाना यानी अल्लाह ताला की अता इतनी होगी कि काफी हो जाएगी, वो कहेगा मेरे लिए काफी है, वो खुद कहेगा। दुनिया में देखे ना आपको कितना भी कुछ मिल जाता है ना, आप कभी नहीं कहते काफी हो गया, आप कहते हैं और मिले, क्योंकि इंसान का पेट भरता नहीं, कहते दुनिया नाकिस है ना, वो जो पहले मिला हुआ उसमें से कुछ खराब हो जाएगा, तो इंसान यहां पे कभी नहीं कहता काफी है, काफी हो नहीं सकता यहाँ, मगर हाँ जन्नत में इतना कुछ अल्लाह ताला देगा, इतना कुछ देगा कि इंसान खुद कहेगा काफी है मेरे लिए, इतना अता कर देगा। अल्लाह अकबर, सोचे फिर कितना कुछ होगा कि वो इंसान जो सारी जिंदगी नेमते लेके भी नहीं कहता कि काफी हो गया, वो कहेगा कि काफी हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये जन्नत की नेमते हैं, ये जन्नत की बातें हैं, किसी को ये ना समझे कोई कि ये बस ऐसे ही ऐसे मेसमराइज किया गया, ये ऐसे ही बस ख्याली बातें हैं, ये ऐसे ही ये है, नहीं ये हक है, ये अल्लाह की बात है, ये ख्वाबों की दुनिया नहीं है, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। और आगे आएगा ये रब السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا, वो दिन होगा, अभी आया ना जजा में रब्बी का, रब की तरफ से जजा है। वो रब कौन है? जो रब है, मालिक है, खालिक है, पालने वाला है। रब के अंदर ना एक मोहब्बत का आंसर होता है, एक जब हम इसलिए दुआ भी करते हैं तो रब कह के कह करते हैं, तो रब पालने वाले को कहते हैं, परवरिश करने वाले को कहते हैं, मालिक को कहते हैं। जो जो किसी चीज का मालिक होता है उसको अच्छा लगता है कि उसकी चीज बढ़े, तो वो बढ़ोतरी देता है, परवरिश करता है, आगे बढ़ाता है बंदे को। सारी जिंदगी उसी ने पाला पोसा होता है, और पालने में एक शफकत जरूर होती है। पालने का वर्ड जो बताता है ना, वो शफकत उसके अंदर है उस वर्ड में, ऐसे इसीलिए हम कहते हैं ना माँ पालती है, उसमें शफकत है ना। तो ये वो अल्लाह ताला ने फरमाया जजा में रब्बी का, जजा मिन अल्लाह नहीं फरमाया, तुम्हारा रब है ना उसकी तरफ से जजा है, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, उसने तुम्हें पाला है पोसा है, वो रब है, वो मालिक है आसमानों का और जमीन का और जो उनके दरमियान है, उन सबको वो ही पाल रहा है, रब्बल आलमीन है वो, अर रहमान, वो रहमान है, ला यम्लिकुना मिन्हु खिताबा, वो ना मालिक होंगे उससे बात करने के। ये क्या बात आई, रहमान का लफ्ज यहाँ पे क्यों आया? इसलिए कि जब इंसान जिसने आज तक आखरत को नहीं माना, झुठलाया या सरकशी की, अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ा है, अब ये सारी बातें सुन के उसके दिल में अगर कहीं परेशानी आ जाए और अगर कहीं उसको फिक्र लग जाए और वो सोचे कि हाय मैंने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मैं क्या करूँ अब, तो तुम्हारे लिए भी रास्ता खुला है, तुम मायूस ना हो, वो रहमान है उसके लिए जो तौबा करके उसकी तरफ आना चाहे, उसके दरवाजे खुले में। आगे यही बात आएगी 39 आयत, वो रहमान है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का इसमें माना है, रहमान फा फालान के वजन पर इसके अंदर माना एक्सेसिवनेस का आता है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला और हर वक्त अपनी रहमत निछावर करने वाला। ला यम्लिकूना मिन्हु खिताबा, वो नहीं मालिक होंगे उससे बात करने के, यानी वो एक दिन ऐसा होगा कोई उससे बात करने की मिजाल नहीं रखेगा, कोई दम नहीं मार सकेगा, कोई कुछ कह नहीं सकेगा, सब खड़े होंगे, उसकी हैबत ऐसी होगी, उसका जलाल ऐसा होगा कि किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, सिर्फ सांस की आवाज आ रही होगी जैसे हम पढ़ते हैं। वरना आप देखिए क्लासरूम है या इवन मस्जिद वगैरह, लेक्चर चल रहा होता है, खुतबे तक में लोगों को चुप कराना पड़ता है कि चुप कर जाओ चुप कर जाओ, कहीं लेके वो साइन लगा देते हैं, चुप कर जाओ भाई मत बोलो, खामोश हो जाओ। क्लास में बच्चों को चुप कराना कितना मुश्किल होता है, खवातीन को चुप कराना कितना मुश्किल होता है, इसमें सारी मखलूक खड़ी हुई है और एक दूसरे को देख भी रहे मगर कोई बात नहीं कर रहा, आपस में भी नहीं कर रहे, सिर्फ हम से एक सांस की आवाज है बस, उसके अलावा कुछ नहीं, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि वो दिन कैसा होगा जिसमें हर कोई कितना हैबत ज़दा होगा, कितनी हर एक के ऊपर रोब तारी होगा और कितनी उसके ऊपर एक यानी ऐसी दबदबा उस जगह का और अल्लाह ताला की जात का दबदबा उसके ऊपर कितना होगा, ये कोई बोल ना सकेगा, कोई का आवाज ना निकाल सकेगा। तो फिर वो लोग जो कहते हैं हमारे तो कोई सिफारशी हमें उस दिन छुड़ा लेंगे, ये कर लेंगे, कोई कौन छुड़ा सकेगा, उस दिन तो कोई बोल भी ना पाएगा। यौम यकूमुर रूहु वल मलाइकातु सफ्फा, जिस दिन खड़े होंगे रूह और मलाइका सफ दर सफ, सफे बनी होंगी सबकी। सफ दर सफ करने का मतलब है कि इतने डिसिप्लिन से खड़े होंगे। आपको पता है फरिश्तों की तो हर वक्त सफे हैं, यानी सफ एक आजी की भी अलामत है कि सफ बना के खड़े होना। जो कोई खड़े होते, एक होता है हैजर्ड खड़े होना, उसके अंदर आजी नहीं लगती। एक सफ बना के जैसे नमाज के अंदर खड़े हुआ जाता है, उस तरह जब खड़े हुआ जाता है तो उसके अंदर एक आजी है। तो रूह, रूह से मुराद रूहुल अमीन भी है। रूहुल अमीन यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र जैसे सूरह कदर में अलग से आया क्योंकि वो फरिश्तों के सरदार हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो रूह से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुए। और बास कहते हैं कि रूह से मुराद तमाम इंसानों की रूहें हैं। इसी तरह बाज ने ये कहा कि रूह एक ऐसा फरिश्ता है या एक ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की जो तमाम फरिश्तों में बड़ा फरिश्ता है। वो इतना बड़ा है कि पहाड़ों से आसमानों से ज्यादा बड़ा है, और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो मुंह खोले तो सारे फरिश्ते उसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा है। हो सकता है कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही हो, अल्लाह आलम ये वो कौन सा फरिश्ता है। या रूहें मुराद हैं, लेकिन ज्यादा राजे यही बात है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं वो भी सफ में खड़े होंगे और दूसरे फरिश्ते भी सफ बांधे खड़े होंगे। ये नहीं कि वो जैसे तैसे खड़े हो जाएं कि अभी तो इतनी अफरा तफरी है, चलो जी खड़े हो जाए, जिधर जिधर को जिसको जगह मिलती खड़ा हो जाए। नहीं, सब सफों में होंगे, इवन इंसान भी सफों में खड़े होंगे। और इतना बड़ा कुव्वत वाला फरिश्ता भी, बताने का मकसद ये है कि वो भी सफ में होगा। और सफ में आजी है, सफ के अंदर खड़े होना इस चीज की अलामत है कि फरमाबरदारी से खड़े में, जैसे दुनिया में हम सफे बांध के खड़े होते हैं नमाज के लिए। जिस वक्त ये पीछे आया ना, ये आयत 18 में फतूना अफवाजा, तो वो आएंगे फौज दर फौज। तूना में भी आजी का माना है, ऐसे नहीं है कि कोई अकड़ता हुआ आ रहा हो, मैं दुनिया में भी बहुत बड़ा था और मैं यहाँ पे बादशाह हूँ और मैं वहां पे भी जाके बादशाहों की तरह चलना शुरू हो जाए। नहीं, आजी के साथ आएंगे, और सफ बनाने में भी आजी है। ला यतकल्लमूना, नहीं वो बोलेंगे, इल्ला मगर मन अदिना लहु रहमान, जिसको इज़न दे रहमान। इतना ज्यादा खौफ तारी होगा ना, वही वक्त होगा जब कलेजे हलक को आ रहे होंगे, इंसान कुछ बोल ना पाएगा और अपने पसीने में शराबूर होगा। अब इस वक्त सारी बोलतियां बंद हो चुकी होंगी, वो जो कहते थे ना हम तो अल्लाह ताला को ये कह देंगे और वो कह देंगे, और मैंने तो वहां पे जाके झगड़ना है और मैंने तो जाके वहां पे ये कह देना है, कोई बोल ना पाएगा। मगर जिसको रहमान, यानी यहां पे भी रहमान का लफ्ज आया, रहमान की रहमत है कि किसी को इजाजत दे दे, वरना किसी की अपनी मिजाल नहीं। चाहे वो कोई पैगंबर है, चाहे वो कोई फरिश्ता है, फरिश्तों से बढ़ के क्या बात हो सकती। फरिश्ते अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा नेक मखलूक है, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले। वो इतने डरे होंगे और वो उस दिन ऐसे फरमाबरदारी के साथ कंधे झुकाए खड़े हुए हैं, वो सफ में खड़े हुए हैं। अजीम फरिश्ता भी ये नहीं कह रहा कि मैं तो इतना बड़ा हूं और मैं क्यों, वो भी अपने आप को इस तरह बाअदब करके खड़ा हुआ है, तो किसकी क्या मिजाल होगी कि वो कुछ बोले। तब अल्लाह ताला जिसको फरमाएगा कि तुम बोलो, वो बोलेगा। वकाला सवाब, और वो भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा। वकाला सवाब, सवाब में मुख्तसिर बात भी है, टू द पॉइंट बात भी है। और बाज मुफसरी ने कहा कि वो सिर्फ कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतनी सी बात कहेगा। वकाला सवाब, बिल्कुल ठीक ठीक बात, दुरुस्त बात। जैसे कहते हैं वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, वो था वाला सवाब नहीं होता, जैसे उलमा वगैरह फतवा देते हैं ना, तो फिर नीचे लिखते हैं वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह ताला ही दुरुस्त बात को जानता है। तो वो है स्वाद के साथ, तो उसकी बात भी बिल्कुल ठीक होगी, ऐसे नहीं इधर उधर की मारता जाए और उसको बात करने को कह दिया है तो आप दुनिया जहान की कहानियां पेश करना शुरू कर दे। नहीं, ज़ालिकल यौमुल हक, ये ऐसे जैसे कोई जज ना अपना वो सारा वर्डिक्ट दे के फिर उसके बाद वो एक वो उसके पास होती है ना हैमर, तो उसको मारता है और कहता है बस ये ज़ालिकल यौमुल हक, ये है दिन बर हक, ये हकीकत है, ये दिन हक है, हक में ये माना है कि ये हकीकत है, और ये हक में ये भी माना होता है बा मकसद है, और हक में ये भी माना होता है कि जिस जो पता ही है, पता ही सबूत है इसका, यानी ये लाजिम है, ये ऐसा ही है। ज़ालिकल यौमुल हक, ये है दिन हक का, हकीकत है। तो क्या इससे पहले आज क्या हकीकत नहीं है? आज का ये जो दिन हम गुजार रहे हैं ये क्या हकीकत नहीं है? उस दिन वाकई ये तो लगेगा कि तो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ हकीकत नहीं थी, असल हकीकत तो ये दिन है। इसीलिए तो इंसान कहेगा या लैतनी, वो तो आगे आता है या लैतनी कद्दम तुली हयाती, या लैतनी कद्दम तुली हयाती, यानी ए काश मैंने आगे भेजा होता अपनी जिंदगी के लिए। वो ये क्यों नहीं कह रहा होता मैंने उस जिंदगी में किया होता, फी हयाती अपनी उस जिंदगी में कुछ किया होता, वो कहता है ली हयाती लिए जिंदगी के। उसको अब नजर आ रहा है असल जिंदगी तो ये है, वो थोड़ी जिंदगी थी, वो तो हकीकत ही नहीं थी, वो तो पता नहीं क्या था, एक आंख का झपकना उसको जिंदगी थोड़ी कहते, एक साथ एक दिन का कुछ हिस्सा उसको जिंदगी थोड़ी कहते, तो वो तो उसको जिंदगी लगेगी ही नहीं। आगे हम पढ़ेंगे ना लम यलबसु, नहीं वो ठहरे मगर क्या इल्ला आशियातन औ दुहाहा, मगर वो ठहरे सिर्फ इतना सा आशिया या दुहाहा, इतना सा वक्त। आशिया का वक्त कितना होता है? सूरज गुरूब होने लगता है जब, उस वक्त से लेके जब सूरज पूरा डूब जाए कितनी देर लगती है उस, चंद मिनट ही तो लगते हैं, 10 मिनट। और दुहाहा इतना दुहा का वक्त, बस इतनी सी देर के लिए वो तो उसको जिंदगी करार ही नहीं देगा। तो ये है दिन, हकीकत ये है। इसीलिए हज़रत अली ने फरमाया ना लोग सो रहे हैं और वो उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी, नहीं उस वक्त पता चलेगा असल तो जिंदगी ये है। तो अब क्या है, फमन शाह अत्तखदा इला रब्बी मआबा, तो जो कोई चाहे बना ले अपने रब की तरफ ठिकाना। अल्लाह ताला ने डोर्स ओपन कर दिए, इतनी शफकत है ना रब की तरफ, रब वो जो मेहरबान है, जो जो शफीक है, जो चाहे अपने रब की तरफ आना चाहे ना तो आ सकता है। दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं किया, ये नहीं फरमाया जिन लोगों ने ये कर लिया ना अब वो जो तागी है अब वो आराम से बैठे, अब उनको वहीं पे निपटा जाएगा, नहीं, सबके लिए डोर्स ओपन है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी सांस चल रही है, तुम ये सुन रहे हो ना तो इसका मतलब तुम जिंदा हो, तुम्हारे लिए अभी भी चांस है, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह ताला ने बंद नहीं किया, तुम बंद करते हो, अल्लाह ताला ने दरवाजे खोले। मन शाह जो कोई भी चाहे, फमन शाह, तो अब ये सारा सुन लिया है ना, अब इसके बाद तुम में से जिसकी मर्जी है वो अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले। कैसे ठिकाना बनाना होता है? यानी नेकियां करके उसकी फरमाबरदारी करके उससे करीब होते जाओ, उसकी तरफ ठिकाना बना लो, यानी उसके करीब हो जाओ, सिराते मुस्तकीम पे चलने से उसके करीब हो जाओ। तो जब आप नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला से करीब होते जाते हैं, ये कुर्बत का सफर है। जब आप उसकी फरमाबरदारी करते हैं तब भी उसके करीब हो रहे हैं। तो अब किसी को उसने धुतकारा नहीं है अपने दरवाजे से, किसी को उसने मोड़ा नहीं है अपने पास से कि तुम अब बूढ़े हो गए हो अब तुम नहीं आ सकते, हाँ और अब तुमने इतने गुनाह कर लिए अब तुम आराम से बैठो, अब तुमसे वहीं निपटा जाएगा। सबके लिए दरवाजा खोल दिया तौबा का, तौबा करके पलट आओ और उसकी तरफ ठिकाना बना लो। इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबा, कितनी झोड़ झंझोड़ देने वाली बात है ना। हमने तो खबरदार कर दिया बेशक तुमको करीबी अजाब से। अजाब करीबी कैसे है? यानी हाँ, मौत या कयामत कोई तो चीज आ ही जाएगी, करीब है ना। अगर इसी तरह की रविश इख्तियार किए रखी तुमने, तो हमने तो डरा दिया तुम्हें कि अजाब करीब है। अगर तुम नहीं बदलते तो बस आंख बंद होने की देर है और अजाब शुरू है। यौम यन्ज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा, जिस दिन देखेगा इंसान जो उसने आगे भेजा। और हम आगे पढ़ेंगे कि उस दिन इंसान क्या क्या याद करेगा, मैंने क्या भेजा अपनी जिंदगी के लिए, काश मैंने भेज दिया होता, मैंने आगे क्या भेजा, मैंने पीछे क्या छोड़ा। आगे भेजने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसान आगे भेजता है अपने अमल और कुछ पीछे छोड़ जाता है। उसने आगे अच्छे अमल भेजे या बुरे अमल भेजे, सब उसको दिखा दिया जाएगा। मिसकाला जर्रा दिन भी दिखा दिया जाएगा, जर्रे के बराबर भी, चाहे वो खैर हो या शर हो, यारा वो देख लेगा जर्रे के बराबर भी। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो छोटी सी बात है ना, जबकि जर्रे के बराबर भी दिखा दी जाएगी। तो जो भी उसने किया होगा, कुछ बोला है, कुछ किया है, सब कुछ जवानी के अमाल, बुढ़ापे के अमाल, जहालत में जो किया वो भी, जो इल्म आने के बाद किया वो भी, जो गम के मौके पे किया और जो खुशी के मौके पे किया। हम तो कह देते ना, गया खुशी का ही मौका है ना, अब तो हर चीज जायज है। अब गम है ना तो अब तो हर चीज ठीक है, पर अंडरस्टैंडेबल है, जो मर्जी करो। जो भी इंसान ने किया सारी जिंदगी, उसके दोनों हाथ वो चीज आगे भेजते थे, वजदुमा मिलो हाजिरा, वो पा लेंगे जो उन्होंने अमल किया अपने सामने हाजिर। व यकूल काफिर या लैतनी कुंतु तुराबा, और काफिर कहेगा ए काश मैं होता मट्टी, ए काश मैं मट्टी हो जाता। ये किस वक्त वो ये ख्वाहिश करेगा, जब वो देखेगा जानवरों का हिसाब किताब हो गया, वो मट्टी कर दिए गए, उसके बाद उनके लिए ना जन्नत है ना जहन्नम है, कहेगा हाय काश मैं भी मट्टी हो जाता। तो वो उस वक्त ये हसरत करेगा कि मैं काश इनके जैसा ही हो जाता, कि मैं मेरा आज कोई हिसाब किताब ना होता। और ये भी कि मट्टी इंसान के लिए, यानी एक वो है ना कि मट्टी में मिल जाना इंसान के लिए खत्म हो जाना है, तो मैं खत्म हो जाता। तो काफिर ये हसरत करेगा। और यहाँ पे यकूल आया, यकूल जो है ये मुजारे है। मुजारे में क्या माना होता है? मुजारे में कंटिन्यूटी का माना होता है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो वो कहेगा एक आश में मट्टी हो जाता, यानी वो चिल्लाता रहेगा लंबे अरसे तक, यही कहता रहेगा, यही हसरत करता रहेगा। सिर्फ एक दफा नहीं कहेगा, वो जो इस दिन के आने से पहले कितने अकड़ अकड़ के चलता था, वो जो किसी की बात सुनता नहीं था, वो जानवर होने की ख्वाहिश करेगा। अल्लाह हु अकबर। इसी तरह पीछे भी जब हम ये पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ाई, जितनी भी वर्ब्स पढ़ी हैं, तो वो सारे आप देख रहे हैं इसमें इतना, यानी फेल और इसम के अंदर ये फर्क होता है कि फेल के अंदर ना इतना ज्यादा परमानेंट चीज नहीं होती, इसम के अंदर ज्यादा होती है। तो जहां पे इसम आया, ये भी देखिएगा कि इसके अंदर ज्यादा, जैसे मुत्तकीन है, यानी उन्होंने सारी अपनी जिंदगी तकवा के साथ गुजारी। ऐसा नहीं कि एक दिन उनको कोई चीज असर कर गई तो वो फिर बहुत नेक बन के बैठ गए, लेकिन अगले दिन बस असर खत्म हुआ तो फिर वही बातें शुरू हो गई, फिर एक दिन कहीं याद आ गया तो फिर थोड़ा सा अपने आप को सीधा कर लिया, फिर उसके बाद, ये नहीं। मुत्तकी ये एक परमानेंट सिफत है उनकी, ये उनकी क्वालिटी ऐसी है कि जैसे जिसको हम कहते हैं ना कि फलां ने सखावत की और फलां सखी है, तो क्या फर्क है? उसने सखावत की तो एक दिन की होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रोज ही वही काम करता है। सखावत का, लेकिन फलां सखी है तो वो हमेशा सखी होता है। इसे यहाँ पे आप देखिए, मुत्तकी बनने में ही निजात है। मुत्तकी इंसान वो है जो हमेशा बच बच के चलता रहे, गुनाहों से बचता रहे और नेकियों की तरफ दौड़ता रहे। और गुनाहों से किस लिए बच रहा था? कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। नेकियों में किस लिए दौड़ रहा था? कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। वो ही मुत्तकी है, और मुत्तकीन के लिए ही यहाँ पे मफाज है और दूसरी जगह के उन्हीं के लिए जन्नत है। तो हम इस सूरत को पढ़ने के बाद अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करें। एक तो ये कि क्या मेरा ईमान आखरत पर वैसा है जैसे कि होना चाहिए? पहला सवाल शुरू की आयात से, और मैंने आपको बता दिया आखरत के इनकार में क्या क्या आता है। दूसरा, क्या मैं अल्लाह ताला की नेमतों को उस तरह से पहचानती हूँ जैसे पहचानने का हक है, और उसके बाद उन पे गौर करके अपने रब के साथ वैसे झुकती हूँ, और शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के जज्बात मेरे अंदर हर वक्त होते हैं? क्योंकि इन नियमतों से तो 24 घंटे 24/7 फायदा उठा रहे। फिर ये कि जहन्नुम के बारे में मैं कितना सोचती हूँ, कितनी मुझे सोच आती है, कभी आती भी है कि नहीं आती, जबकि हर एक ने उसके ऊपर से गुजरना है। तो मुझे कभी सोच आती है कि जहन्नुम क्या जगह है और मैं उस पे से गुजर पाऊंगी या नहीं, और जहन्नुम मेरी ताक में बैठी हुई है तो मैं अपने लिए इंतजाम करूं? तो मैं कितना सोचती हूँ, कितनी प्लानिंग करती हूँ इसके लिए? फिर तकवा क्या चीज है, और मैं ये क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं ना, तकवा क्या चीज है और मैं कैसे मुत्तकी बन सकती हूँ? इसकी सोच मैंने लानी है। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, आपने मतलब किसी ने सोच लिया ना मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो लाइन इख्तियार करता है। एक दिन में तो नहीं बन जाता, लेकिन वो लाइन पकड़ लेता है, फिर वो उसकी टूवर्ड्स अपना सफ़र शुरू करता है, फिर वो वही सब्जेक्ट लेता है, फिर वो वही मेहनत करता है, फिर वो उसी कॉलेज में जाता है, फिर वो कहीं जाके बनता है। आपने मुत्तकी बनना है, ये भी एक सफ़र है। कहीं गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर गिरेंगे उठेंगे, लेकिन इस सफ़र को जारी रहना चाहिए कि अल्लाह ताला के हाँ मुत्तकी कहीं गिन लिए जाएं। फिर उसके बाद अगला सवाल अपने आप से कहें कि मैंने क्या कहीं कोई ऐसे सहारे तो नहीं सोच रखे कि जो मुझे उस दिन काम आ जाएंगे और मुझे बचा लेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि कोई भी बोल ना सकेगा। और फिर ये सोचें कि अल्लाह ताला का रास्ता मेरे लिए खुला है। इमेजिन करें कि ये रास्ता खुला है और अल्लाह ताला मुझे बुला रहा है कि जो भी आना चाहे आ जाओ, मेरा बनना चाहे बन जाओ। क्या मैं तैयार हूं अल्लाह की बनने के लिए? और मैं आगे, अगला सवाल, मैं आगे क्या भेज रही हूं? मैं ये आज से देखना शुरू कर दूं क्योंकि कल तो मुझे दिखा ही दिया जाएगा। इन सवालों के जवाब आपने अपने लिए लिखने, किसी को किसी ने चेक नहीं करने, किसी को दिखाने नहीं है, मगर कम अज कम अपने साथ जरूर सच्चे हो जाए। और हर सूरत में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इसी तरह सवालात दिया करूंगी जिनके आपने खुद अपने लिए जवाब तैयार करने हैं, खुद जवाब देना है। और कम अज़ कम खुद से तो सच बोलें ना, किसी और से तो झूठ बोल सकते हैं, अपने साथ तो झूठ ना बोलें। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन का इमाम बनाए, और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। तिलावत सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا